माना के आजकल रूठा वक्त है, जिंदगी का सफर थोड़ा सख्त है, रुका हुआ है इस जहां का कारवां, ये रात जाएगी गुजर तू देखना, नई धूप है खिड़कियों पे इसे आने दे, अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे, नई धूप है खिड़कियों पे इसे आने दे, अंधेरे है किस काम के तू इन्हें जाने दे।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज से एक नई श्रृंखला आरंभ होने जा रही है, गुण अवगुण की धूप और छांव, गुण अवगुण की धूप और छांव। इसमें 63 वर्च्यूज आएंगे, 63 गुण, और इससे पहले हम 21 लव, 21 प्रकार के लव के ऊपर श्रृंखला देख चुके हैं। तो 63 और 21 कितने हो गए, 84। अगर हम इन सबको अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो हमारे 84 जन्म सुधर जाएंगे। तो जो लव की सीरीज थी उसमें आई लव मुरली, आई लव मम्मा, आई लव यज्ञ, आई लव सर्विस, आई लव सूक्ष्म वतन, परम धाम, दादियाँ, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा भोजन, लास्ट में, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। एक एक टॉपिक के ऊपर कितना विस्तार निकला, अदरवाइज उन शब्दों को केवल अगर हम अपने मन बुद्धि में रख लेते हैं, उन पर हम विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, तो वो शब्द शब्द ही रह जाते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर हमारा विचार सागर मंथन चलता है तो हमारी मनन शक्ति भी बढ़ती है, और उसकी गहराई में जाने से उस चीज़ के प्रति हमारा प्यार भी बढ़ता है, उसकी वैल्यू का महत्व का भी पता चलता है। इसी तरह से अभी जो श्रृंखला आरंभ होने जा रही है गुणों के ऊपर, तो एक एक गुण के ऊपर कितना विस्तार से हम जाएंगे, गहराई में जाएंगे, गोते खाएंगे, नए नए रत्न लाएंगे वहाँ से, तो उसका भी हम फायदा ले सकते हैं। अदरवाइज गुणों का हमको मालूम तो होता है, लेकिन उसकी गहराई में ना जाने से वो हमारे जीवन में उनका आत्मसात नहीं होता है, उसको हम पूरी तरह से धारण नहीं कर पाते। तो आज जिस गुण के ऊपर चर्चा करेंगे वो है एक्यूरेसी। इसको हिंदी में समझना थोड़ा टेढ़ी ही लगती है, बोलना भी टेढ़ा लगता है, यथार्थता, लेकिन इंग्लिश में एक्यूरेसी। संसार में अगर देखा जाए तो सारे झगड़ों की जड़ जो है वो मूल्यों का अभाव है। अगर हमारी किसी से अनबन भी होती है या कोई हमें अच्छा भी नहीं लगता है तो क्या कारण है उसका, उसमें अवगुण दिखाई देते हैं, गुणों का अभाव दिखाई पड़ता है। हमारा वो दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ है जो हम दूसरों के गुणों को देख सकें, या कहीं ना कहीं हमने अपने ऊपर काम नहीं किया है जो हमेशा हमको दूसरों के गुण दिखाई दे। तो एक्यूरेसी जो है हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे जीवन में यथार्थता होनी चाहिए। यथार्थता अर्थात उसकी परिभाषा कहेंगे कि जिस चीज़ को जो है जैसी है उसी तरीके से उसको समझना और उसको जीवन में अमल में लाना, उसी तरीके से उसके साथ हमारी व्यवहारिकता हो और उसी तरह से हम उस पर चल सकें। हर मनुष्य का दृष्टिकोण अपना अपना होता है। कोई अगर कोई फिल्म देखता है तो उसको देखने का भी अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई तो उस फिल्म को मनोरंजन के हिसाब से देखेगा, दूसरा व्यक्ति उसी फिल्म में से कोई शिक्षाएं अर्जित कर लेगा, तीसरा व्यक्ति हो सकता है उसी फिल्म को देख के बिगड़ भी जाए, और चौथा व्यक्ति उस फिल्म को देखकर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा है, उसने उसे कुछ सीखा ही नहीं है। तो ऐसे मानसिक जो स्थिति है वो खंड खंड विभाजित हो जाती है, तो उससे हम कुछ सीख नहीं पाते हैं फिर। तो एक्यूरेसी अर्थात जो चीज है जैसे है उसी तरीके से उसको समझना, उस पर चलना, उस पर व्यवहार, उसके साथ व्यवहारिकता में आना। एक्यूरेसी और भी बहुत सारे अलग अलग नजरिए से अगर देखें तो उसकी परिभाषाएं भी परिवर्तित होती जाती है। जैसे एक इंजीनियर है तो उसकी एक्यूरेसी की परिभाषा अलग टाइप से हो जाएगी, एक डॉक्टर है उसकी अलग से हो जाएगी, टीचर है उसकी अलग से हो जाएगी, स्टूडेंट है उसकी अलग से हो जाएगी। तो हमारे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में एक्यूरेसी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है उस पर हम देखेंगे, और उस एक्यूरेसी को जीवन में कैसे लाएं, अगर वो जीवन में नहीं आ रही है तो उसका क्या कारण है, और अगर वो आ गई है तो उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर हम वो हमारे जीवन में नहीं आ रही है तो और क्या करना चाहिए, तो वो भी हम उस पर चर्चा करेंगे आपस में। तो एक्यूरेसी अर्थात सबसे पहले तो हमारे सोचने में एक्यूरेसी चाहिए, सोच में, संकल्पों की एक्यूरेसी। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प किया तो सृष्टि का निर्माण किया, तो वो एक्यूरेट संकल्प किया, अगर ऐसा वैसा संकल्प करते तो सृष्टि बिगड़ भी जाती और सृष्टि कुछ और होती। तो ऐसे ब्रह्मा भगवान को भी संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो वो भी एक्यूरेट संकल्प उठा समय अनुसार। तो जो भी हम सारे दिन में संकल्प करते हैं अमृत वेले से रात्रि तक, अगर वो संकल्पों की एक्यूरेसी नहीं है तो हमारी दिनचर्या भी अव्यवस्थित हो जाएगी, और जब भी छोटी छोटी बातें आएंगी तो हम उससे अप्रभावित के बजाय प्रभावित होते रहेंगे, अवस्था हमारी हलचल की स्थिति में रहेगी, क्योंकि हमने अपने मन बुद्धि को एक्यूरेट संकल्पों का भोजन नहीं दिया है, तो आत्मा कमजोर होने लगेगी। तो पहले तो हमें अपने संकल्पों पर नजर दौड़ानी पड़ेगी कि कौन कौन से संकल्प हमारे अयथार्थ हैं और यथार्थ हैं। जैसे हंस के लिए कहा जाता है कि मोती और कंकड़ पत्थर अलग अलग कर देता है, तो ऐसा नहीं कि संकल्प दूसरे नहीं आएंगे, संभावना है उसकी, आ सकते हैं, लेकिन अगर हमारी निर्णय शक्ति यथार्थ है, एक्यूरेट है, तो उन संकल्पों को हम वहीं के वहीं छोड़ देंगे जो हमारे काम के नहीं है, या जिन संकल्पों से हमारी दिनचर्या प्रभावित हो रही है, हमारी व्यवहारिकता में कहीं दूरियां आ रही हैं, हमारे बोल से किसी का दिल जो जख्मी हो रहा है, तो ऐसे संकल्पों को हम तुरंत छोड़ सकते हैं अगर हम उस पर थोड़ा सजगतापूर्ण काम करें, सतर्क रहें उसके ऊपर। तो पहले संकल्पों की एक्यूरेसी, अगर संकल्पों की एक्यूरेसी है तो हमारा फिर पुरुषार्थ भी यथार्थ होगा। बाबा कहते यथार्थ पुरुषार्थ, अर्थात क्या, जिस संकल्प में अर्थ समाया हो, कुछ ना कुछ, बेअर्थ नहीं हो, बिना अर्थ के ना हो, जिस संकल्प में कुछ हमारा लाभ है, कुछ हमारा कल्याण छिपा हुआ है, तो वो संकल्पों में यथार्थता चाहिए, और संकल्पों की यथार्थता के इतना भंडार कहाँ मिलेगा हमको, हम सब जानते हैं, मुरलियों में मिलेगा। जितना हम उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है तो संकल्प हमारे एक्यूरेट होते ही आते हैं। तो थोड़ा अटेंशन की कमी है, जैसे संडे की मुरली में था ना कि बच्चे ध्यान तो देते हैं जैसे बाप की आशा है कि बच्चे बाप समान बन जाएं, स्नेह, शक्ति और अटेंशन, अगर इन तीन बातों पर ध्यान रखें तो थोड़ा सा अटेंशन अगर रखें तो हमारे संकल्पों में एक्यूरेसी आती जाएगी, यथार्थ संकल्प ही हमारे मन से उपजेंगे और अच्छे संकल्प उपजेंगे तो स्वतः ही फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो पहले हमारे संकल्पों में यथार्थता चाहिए। दूसरा है देखने में यथार्थता चाहिए। जैसे कोई संदेश अगर ऊपर जाती है या हम ही कहीं मान लीजिए अनादरा पॉइंट जाते हैं, हम सभी अगर अनादरा पॉइंट जाएं तो सभी जो देखेंगे अगर बाद में उसको कहा जाए कि इसको लिखिए तो सभी को लिखने का तरीका अलग अलग होगा, क्योंकि हमारी जो एब्जॉर्ब करने की पावर है वो सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन हमें उसको विकसित करना है। जो है जैसा है उसको वैसे देखना, जैसे शरीर दिखाई दे रहा है तो शरीर जैसा है उसको वैसे ही देखना, उसकी वास्तविकता को समझना, उसके अंदर जो है उसकी भी वास्तविकता को समझना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सीधी आत्मा दिखाई देगी, ये तो लंबे समय से हम बाबा कहते हैं कि ब्रुक्टी में देखो, लेकिन दिखाई देती है आत्मा, नहीं दिखाई देती है। हम कह तो देते हैं हाँ ब्रुक्टी में देखना चाहिए, लेकिन इतना लंबा चौड़ा शरीर थोड़ा कैसे ओझल हो जाएगा वो, तो उसके अगर हम वास्तविकता को जान जाएंगे कि शरीर वास्तव में क्या है, तो उस वास्तविकता से अगर हम अनभिज्ञ हैं तो भी हलचल होती है। तो शरीर की वास्तविकता को भी समझना है और उसके अंदर जो हीरा है उसकी वास्तविकता स्वतः समझ जाएंगे जब हम शरीर की वास्तविकता को समझेंगे। तो देखना भी हमको एक्यूरेट है कि क्या चीज है वास्तव में हम देख रहे हैं। जैसे ऊपर संदेश जाती है तो वो जिस तरीके से, जैसे गुलजार दादी का संदेश और अन्य दूसरी आत्माओं का संदेश फर्क होता है ना, तो देखने का, क्योंकि हमारी ग्रहण करने की शक्ति कैसे है, हमने देखा किस नजरिए से, हमारी भावना कैसी है वैसे वहां पर, तो देखना भी हमको एक्यूरेट है। तीसरी बात है सुनना भी हमको एक्यूरेट है। जैसे बाबा कहते हैं मुरली तो सुनते हो, लेकिन उसको उसी तरीके से सुनना जिस तरीके से भगवान हमको सुना रहा है। जैसे बताया ना, फिल्म को अलग अलग तरीके से भी देख रहे हैं, लेकिन उसमें से अपने अपने तरीके से जिसको जो चीज चाहिए वो ही देख रहा है। कोई मनोरंजन के तरीके से देख रहा है, कोई टाइम पास करने के तरीके से देख रहा है, कोई उसमें से सीख रहा है। इसी तरह मुरली में भी ऐसे ही होता है। मुरली भी एक फिल्म की तरह ही है जो एक घंटा चलती है। अगर हमारी स्थिति अच्छी है तो हमें सुनने में बहुत मजा आता है, अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं हमको सुस्ती भी आएगी, या फिर हम देखेंगे कब टाइम पास हो पूरा हो जाए, कब अच्छा मीठे मीठे बच्चे आए तो थोड़ा हल्कापन महसूस होता है। तो फिर सुनाने वाला कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो हमको सुनने के ऊपर भी हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक दिन ही सारी चीजें हो जाएंगी। कर्त करता अभ्यास के जड़मति उत सुजान। तो हमको अपने तरीके से ही कोई ऐसा तरीका तलाशना है, ऐसा उपाय रचना है जिससे हमारी सुनने की जो है रोचकता बढ़ती जाए, सुनने में रुचि बढ़ती जाए। जो बाबा कहते हैं इंद्रिय सुख का अनुभव हो, तो उसके पीछे फिर बहुत सारी श्रीमत की बातें भी होती हैं। तो सुनने में एक्यूरेसी, जैसे एक यहाँ भी एक बार वर्कशॉप कराई थी ना, चाइनीज विस्पर, अर्थात जो पहला व्यक्ति कहता है वो अंत में सारी बात बदल जाती है जाके, उसने क्या कहा और अंत में कुछ और ही होता है। अगर अभी हम यहाँ एक प्रयोग करें तो यहाँ जो यहाँ कहेंगे यहाँ आकर सारी बात दूसरी हो जाएगी। तो उसी तरीके से मुरली में कुछ हमारे साथ ऐसा ही होता है कि जो हमने सवेरे सुना है शाम तक तो वो कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि सारे दिन में हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, जो भी सुमन संपर्क की बातें आ रही हैं, तो जैसे शाम को योग में बैठेंगे तो वो बातें याद आ जाएंगी। तो जो सवेरे हमने सुना था वो हमारे कर्मेंद्र में समाया नहीं है, उसको हमने आत्मसात किया नहीं है, एकाग्रता पूर्वक सुना नहीं है, तो वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए सुनने में भी एक्यूरेसी चाहिए, यथार्थ तरीके से जो बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, सुनो तो फिर वो स्थिति जो है उस स्थिति में बैठ के जो सुनेंगे वो सीधा अंदर समा जाएगा। लेकिन ये बहुत गहरा महीन पुरुषार्थ है, एक तो दिन का नहीं है, लंबे समय का अभ्यास करने के बाद भी ये स्थिति सहज बनती नहीं है। और स्थिति ना बनने के बाद धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि ये तो बनी नहीं है, लेकिन ये अंत तक हमको इसका मजा लेना है, नहीं बन रही है तो और पुरुषार्थ करते रहना है। तो सुनने भी हमारी एक्यूरेसी चाहिए। दूसरा नेक्स्ट है टाइम। टाइम की एक्यूरेसी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उसका भी हमारे जीवन में। अगर हम समय पर कोई कार्य नहीं करते हैं तो जैसे हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। सफलता की एक सीढ़ी है ये टाइम की एक्यूरेसी। चाहे हमारा आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे पारिवारिक है, आर्थिक है, सब में टाइम की बहुत कीमत है, वैल्यू है। ये जैसे टाइम हमारी एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो क्या होगा, शरीर झुकता रहेगा, इधर उधर जाएगा। ऐसे ही अगर टाइम हमारा ठीक नहीं तो हमारी विकास की जो हड्डी है ना वो भी लुढ़कती रहेगी, एक्यूरेसी नहीं है। सवेरे से लेकर शाम तक जो भी हम कार्य व्यवहार में आते हैं, अगर समय पर उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो वो भी जैसे हमारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं। हम स्वयं के विकास का अवरोध स्वयं ही पैदा कर रहे हैं। जो भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं उनका सामना करने के लिए, उनको सहज तरीके से पार करने के लिए तो शक्ति चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है पल पर। तो ऐसा नहीं है कि जो हमने सोचा सारे दिन में परिस्थितियां वैसी की वैसी रहेंगी कि आज तो दिन हमारा अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ है, दिन में कोई परिस्थिति नहीं आ सकती है, लेकिन परिस्थितियां तो मुंह खोलकर खड़ी हैं और वो तो आनी है क्योंकि बीज तो हमने बोए हुए। तो समय की पाबंदी बहुत जरूरी है, स्वयं को समय पर पाबंद करना। अगर बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, एक सेकंड भी लेट हो जाता तो देते नहीं है पेपर, आगे उसको एंटर नहीं होने देते हैं। अगर डॉक्टरी ऑपरेशन करते करते थोड़ा लेट पहुंचे, तब तक उसका पेट चीर फाड़ के रखा हुआ है तो क्या हाल होगा उतना। अगर हम ट्रेन में जाना है, अगर समय पर नहीं पहुंचे तो क्या होगा। तो समय की एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अमृत वेले जैसे बाबा ने टाइम निश्चित किया हुआ है, अगर उस टाइम पर हम नहीं, भगवान वो वरदान के भंडारे खुले खोल कर बैठा हुआ है, लेकिन हम समय पर नहीं पहुंचे तो बाद में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हाथ हमारे कुछ नहीं आएगा। दूसरा, जो जितना हमको समय, जितना समय हम जो पुरुषार्थ करते हैं उस पुरुषार्थ में एक्यूरेसी चाहिए, उसमें टाइम पास वाला नहीं चाहिए। भले हम थोड़ा करें लेकिन कुछ हमारे हाथ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी उठ गए हैं, उतना टाइम हमने पुरुषार्थ किया, अच्छी बात है कि आदत पड़ रही है वो, लेकिन वो आदत ऐसी भी ना हो जाए कि वो हमारी आदत निरंतर हमारी नींद की अवस्था में जा रही है, क्योंकि अगर हमने उस पर थोड़ा सा अटेंशन नहीं है तो हमारी आदत निरंतर बन जाती है। इसलिए आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा भी अगर हम बैठे तो उस पुरुषार्थ का कुछ परिणाम हमारे हाथ में लगना चाहिए, कोई एनर्जी हमें महसूस होनी चाहिए कि हमने उस एनर्जी को अपने अंदर जमा किया है, हमारे हाथ में कुछ नया संकल्प आया है, कुछ बाबा की नई टचिंग आई है, कुछ तो हमारे अंदर खुशी का, उमंग उत्साह का संकल्प इमर्ज हुआ है। तो उस टाइम को हमको सफल करना, नहीं तो अगर हम टाइम को पास कर रहे हैं तो अच्छे संकल्प नहीं आ रहे हैं तो उससे बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे इस विषय के अंतर्गत एक ये भी बात है कि इस एक्यूरेसी पर हम नहीं चलते हैं तो उससे नुकसान भी क्या है कि हम योग में तो बैठे हैं, योग हमारा एक्यूरेट नहीं चल रहा है, हम नींद कर रहे हैं या सुस्ती है, तो उसका वातावरण के ऊपर भी असर है, आसपास के जो लोग हैं जो हमको देख रहे हैं उनके संकल्पों को भी हम प्रभावित कर रहे हैं, वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है। अच्छा, दूसरा अपने साथ भी हम अन्याय कर रहे हैं, न्याय संगत पुरुषार्थ नहीं है वो, क्योंकि शरीर को भी तकलीफ दे रहे हैं, जबकि शरीर अमूल्य धरोहर है, भगवान की दी हुई अमानत है, और इसको भी हमने सही तरीके से उसको जी रेस्ट नहीं दी है, यूज नहीं किया है, तो वो भी जैसे अपने साथ हमने न्याय नहीं किया। तो हमको देखना है हर चीज की एक्यूरेसी से, कि अगर हम अमृत वेले मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस अवस्था में हमने जितना समय किया उतना समय हमारे पास ग्राहक, भले एक एक व्यक्ति ने एक घंटा दुकान खोली, एक ने 10 मिनट ही खोली है, और 10 मिनट वाले ने बहुत प्रॉफिट जमा कर लिया, एक घंटे वाले का कुछ नहीं आया, तो कहीं ना कहीं तो हमारे व्यवहारिकता में या ग्राहक हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमारे में फॉल्ट है वो। तो हम जितना भी पुरुषार्थ करें, क्योंकि ये पुरुषार्थ सहज भी है लेकिन मेहनत वाला भी है, लेकिन सहज करते करते मेहनत भी सहज हो जाएगी। तो हमको जबरदस्ती नहीं करनी है कोई भी चीज़, हमको सहज तरीके से, लेकिन इतना भी नहीं सहज हो जाना कि बिल्कुल ही छोड़ दे कि जब जागे तभी सवेरा, वो भी नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि पूरा संगम योगी अमृत वेला है, सहज राजयोग। तो हम जितना भी करें एक्यूरेट, जैसे मुरली भी सुन रहे हैं तो पूरी मुरली याद नहीं भी रहती है, पांच अक्षर ही पकड़ लें हम सारे दिन, उस पर थोड़ा फोकस करें, उस पर मनन चिंतन करें, ताकि वो कुछ तो हमारे हाथ में आना चाहिए ना, कुछ तो परिवर्तन हमें स्वयं ही दिखाई देना चाहिए, कुछ तो वातावरण में एक नई ऊर्जा का संचार होना चाहिए। तो देखना है जितना भी हम पुरुषार्थ करें उस पुरुषार्थ का परिणाम हमारे हाथ में कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो समय का बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि टाइम तो निकला जा रहा है सही, अब सारे दिन हम बोले जागे हुए हैं, लेकिन पूरी जागृत अवस्था कहाँ है, अवेकनिंग कहाँ तक है वो, अर्थात उन समय हमारी जो बुद्धि है मन बुद्धि में शुद्ध संकल्पों का रमण कितना कर रहे हैं। योग में तो बैठे हैं लेकिन आधे घंटे के योग में हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है, क्या उतनी हमने एनर्जी भगवान से ली है, उसके स्नेह की बरसात का अनुभव किया हमने, उसके वरदानों का अनुभव किया, उससे जो शक्तियाँ मिली हैं क्या हमने उससे स्वयं को चार्ज किया, या जो भी हमको साकाश देनी है प्रकृति के तत्वों को चार्ज करना है, भगतात्मा हमारे सामने उपस्थित हैं, क्या पूरा दो मिनट भी अगर हम उनको साकाश दे रहे हैं तो दो मिनट उनके उनको सामने इमर्ज करके रखा, या बुद्धि बार बार इधर उधर भाग रही है। मतलब थोड़ा पुरुषार्थ करें, ठोस पुरुषार्थ करें, ताकतवर करें, तो धीरे धीरे हमारी जो आदत पड़ेगी ना फिर हम लंबे समय तक भी उसको खींच सकते हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग अगर हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसमें इतना सक्सेस मिलता नहीं है, इसलिए प्लानिंग आवश्यकता है, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है। तो जितना टाइम हमको करना उस टाइम की हमको प्लानिंग बनाना भी बहुत जरूरी है। प्लानिंग से हम सारे सक्सेस को अर्जित कर सकते हैं, कामयाबी हमारे पीछे पीछे आएगी। तो यह है टाइम की भी हमको देखना है कि टाइम को हम कितना एक्यूरेट उसका यूज कर रहे हैं। दूसरा, जब हम संबंध संपर्क में आते हैं, विशेषकर हम ब्राह्मण जीवन में हैं, तो लोग हमारी एक्यूरेसी को देखते हैं कि कितना यथार्थ जो कहते हैं वो करते हैं, सोचने करने में अंतर तो नहीं है, कि सोचते तो हैं लेकिन करते कुछ और है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। संडे की मुरली में था ना, नंबर क्यों हो जाते बच्चों के, संडे की मुरली में था, सोचने और करने में क्यों अंतर हो जाता है, उसके तीन कारण बताए थे, कौन से, अगर मगर के चक्कर से पहले, हाँ तीन बातें, सबसे पहले थी संगठन में संस्कार, संस्कारों के टक्कर, भाई ये तो वहां हमको पुरुषार्थ का पता चलता कि एक्यूरेट पुरुषार्थ हमारा कहाँ है, अगर संगठन में हमारा टकराव हो रहा है अर्थात ज्ञान का अभाव है, माया बार बार हमारे जीवन में इंटरफेयर कर रही है अर्थात हमने अभी शक्ति अर्जित नहीं की है, उससे सामना करने की हमारी इच्छा शक्ति बलवती नहीं हुई है, प्रकृति से हम हलचल में आ रहे हैं, चाहे वो देह की प्रकृति है चाहे पांच तत्वों की प्रकृति है, अर्थात प्रकृति को हमने अपना वश नहीं किया है, उसके अभी अभी अधीन है। तो सोचने और करने में अंतर है, अर्थात हमने सोच तो रहे हैं, सुन तो लिया मुरली में, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, जब तक हमने उस पर काम नहीं किया वो हमारे कर्मेंद्र में समाये नहीं, तो कहीं ना कहीं दूरी बढ़ती जाती है सुनने सोचने में। अगर सुनने सुनने के साथ सोचने के साथ सुनने के साथ उसको अगर हमें कर्म में लाना तो उस पर थोड़ा ठहरना पड़ेगा, उस पर थोड़ा कार्य करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, उस पर थोड़ी नज़र दोहरानी पड़ेगी, तो धीरे धीरे हमारी सोचना और करने में समानता होती जाएगी। तो एक्यूरेसी हर बात में जरूरी है। घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, अगर किसी ने चीज किसी को उठा के दूसरी जगह रख दी है तो लड़ाई झगड़ा होता है, व्यवस्थित नहीं होता सारा सामान, अव्यवस्थित होता है, समय पर नहीं मिलता है, चीज तो घर में पड़ी है लेकिन समय पर मिलती नहीं। तो कई दफा हम भी देखते हैं कोई कोई घरों में भी या कहीं डिपार्टमेंट में बड़े अव्यवस्थित सामान पड़ा होता है, इधर समय पर वो मिलेगा नहीं, है सारी चीज़ें उतना होगा कि डिपार्टमेंट से बहुत ज़्यादा सामान पड़ा हुआ है लेकिन सब बिखरा पड़ा हुआ है। तो हमारी मानसिकता का पता चलता है कि हमारे विचार भी ऐसे बिखरे पड़े हैं, तितर बितर हुए पड़े हैं वो विचार, समय पर वो काम ही नहीं करेंगे, फिर छोटी चीज घर में नहीं मिले तो पूरा कला क्लेश का माहौल तैयार हो जाता है। तो एक्यूरेसी का अभाव है, जो चीज़ हमको जहाँ रखनी चाहिए वहीं रखनी है। तो इसका एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, उसकी शुरुआत आज से हम अपने जो रहने का स्थान है वहीं से करेंगे, जो चीज हमारी वही है या जो हमारे साथ में रहते हैं उनकी चीज को हम वहीं के वहीं रहने दें, ऐसा नहीं उठा के वहीं रख दें या अपनी चीज को तलाशने के लिए दूसरों का सहारा लें। अधिकतर घरों से जब ऑफिस में निकलते हैं लोग तो क्या होता है, किसी की सॉक्स नहीं मिलती है, किसी की टाई नहीं मिल रही है, किसी का बैग नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां रखा ही नहीं, एक्यूरेसी नहीं है। तो हर चीज में हमको एक्यूरेसी चाहिए। घरों में इसी के कारण अधिकतर दूरियां बढ़ती हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, ढूंढते कहीं और है, रखते कहीं और है, और उसका जो सारा प्रकोप है, जो कोप का भाजन बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, और फिर बहाने तो फिर ऑफिस में वही माहौल लेकर जाएंगे, तो कहीं की जो प्रभाव तो कहाँ का होता है और निकलता कहाँ जाकर है, वो पिटाई कहीं और हो जाती है उसकी। तो जो चीज जहां है उसको वहीं रखने का। तो इसका छोटा छोटा प्रयोग हम स्वयं से करेंगे, चाहे हम ऑफिस में सेवा कर रहे हैं, जो फाइलें हमको वहाँ चाहिए वहीं मिलनी चाहिए, जो चीज़ वहाँ चाहिए वहीं उसकी जगह होनी चाहिए, वहीं उसकी सजावट है। क्योंकि जब तक हमारे में इन गुणों का, छोटी छोटी जितने भी हम गुणों पर आगे चर्चा करेंगे इस श्रृंखला के दौरान, तो जब तक ये हमारे में नहीं आते हमारे जीवन में दूसरों को बदलाव नहीं दिखाई देगा। बाहरी तौर पर तो बदलाव दिखाई देता लोगों के, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन सच में अगर हम अपने दिल के ऊपर हाथ रख के देंगे तो क्या उतना हमारे में बदलाव आ रहा है, उतनी एक्यूरेसी कहाँ है? भले देखने से तो ठीक है, लेकिन अंदर के विचारों में हमारा कितना तूफान चलता है। अंदर का बदलाव तो हम उसका सर्टिफिकेट तो स्वयं ही दे सकते हैं। जैसे बाबा ने कहा संडे के बोले स्नेह की माला तो बहुत लंबी है, लेकिन क्या विजय की माला बहुत छोटी है। तो स्वयं के ऊपर विजय अर्थात स्वयं की जो दिनचर्या है, स्वयं की जो जीवन शैली है, स्वयं की जो सारी व्यवस्थाएं हैं या यज्ञ की व्यवस्थाएं हैं, उन यज्ञ की व्यवस्थाओं को भी एक्यूरेट समझकर उनके अनुसार ही हमारी कार्यशैली हो, उनके अनुसार ही हम चलते रहें। जो भी यज्ञ की व्यवस्थाएं हैं उसमें अगर हम अपना मन मत मिक्स करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, अर्थात जो यज्ञ की एक्यूरेसी है उसको भी हम यथार्थ तरीके से चला रहे हैं। अब जिस डिपार्टमेंट में आप सेवा कर रहे हैं तो उसका आपको पता है सारा, उसमें अगर मैं हस्तक्षेप करता हूं जाकर तो क्या होगा, वहां डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ऐसे ही होती है अधिकतर, जो हमको सेवा मिली है उसमें एक्यूरेसी नहीं है और दूसरे की सेवा में हम इंटरफेयर कर देते हैं तो खुद भी डिस्टर्ब ही रहते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब कर रखते हैं। जैसे बाबा ने एक 4-5 संडे पहले मुरली बताया ना कि कोई कोई बच्चों के पास साधन बहुत हैं, उन साधनों को देखकर दूसरे समझते कि इनके जैसा सुखी तो कोई है ही नहीं है, इनके जैसा भाग्यशाली तो कोई है ही नहीं है, लेकिन वो स्वयं को क्या समझते हैं कि हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। तो जो हमको जहां मिला उसमें हम संतुष्ट रहें, उस कार्य में हम एक्यूरेसी बरतें, उसमें यथार्थ रूप से अपने व्यवहारिकता में आए, पुरुषार्थ करें, तो हमारे नंबर हैं। बताया ना सेंटर 50 खोल दिए लेकिन सभी सेंटर में माया है तो नंबर उसको नहीं मिलेंगे, नंबर 2 सेंटर जिसने निर्विघ्न रखे हैं उसको मिलेंगे। तो हम स्वयं के जीवन को कितने निर्विघ्न रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं स्वयं के लिए विघ्न बना और दूसरों के लिए विघ्न निर्माण कर रहा हूं। तो स्वयं के पुरुषार्थ में, स्वयं की सेवा में एक्यूरेसी, स्वयं के समय पर एक्यूरेसी, स्वयं की व्यवहारिकता में एक्यूरेसी चाहिए, जो चीजें जिन चीजों के संबंध संपर्क में आते हैं उन चीजों को रखने में एक्यूरेसी चाहिए। तो हर चीज में एक्यूरेसी चाहिए। जितना इतना हम एक्यूरेट हो जाएंगे तो हमारे में गुणों का विकास धीरे धीरे अपने आप होता रहेगा, उतने अपने आप सफलता हमें महसूस होगा कि हाँ सफलता हमको मिल रही है। तो एक्यूरेसी जीवन में कहीं ना कहीं अभाव रहने के कारण ही हम ऊपर नीचे होते हैं, हमारे विचारों का जो द्वंद्व चलता है वो भी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का अभाव रहता है। पुरुषार्थ में एक्यूरेसी नहीं है, सोचने में एक्यूरेसी नहीं है, बोलने में एक्यूरेसी नहीं है। एक छोटा सा बोल कर दिया, किसी को प्रभावित कर दिया या किसी के दिल को दुखा दिया, बोलने से पहले हमने सोचा नहीं एक्यूरेट बोल नहीं बोले। अगर इंजीनियर एक चीज मशीन का निर्माण कर रहा है और सारी उसने ठीक कर दी लेकिन एक वहां स्क्रू लगाया ही नहीं तो क्या होगा, वो सारी मशीनरी हलचल में रहेगी। तो एक छोटी छोटी चीज का कितना फर्क है। तो हमारी दिनचर्या में भी छोटी छोटी बातें बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं हमारे पुरुषार्थ के विकास में। तो हर चीज में एक्यूरेसी चाहिए, चलने में, देखने में, बोलने में, सुनने में, सुनाने में, तो हर चीज में एक्यूरेसी चाहिए। और किस चीज में एक्यूरेसी चाहिए, हाँ जी, सुनने में, चुप रहने में एक्यूरेसी चाहिए, सोने में, अच्छा सोने में बोले, सुनने में नहीं, सोने में एक्यूरेसी चाहिए। हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सोएंगे ठीक से नहीं, नींद ठीक से नहीं आएगी तो फिर दिन में भी हलचली होगी, इसलिए सोने में भी उठने में भी एक्यूरेसी चाहिए। और हाँ जी, हाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय है, भोजन की बात कही सचमुच, भोजन तो हमारा एक ये योग को शक्तिशाली बनाने का बहुत शक्तिशाली शस्त्र है वास्तव में देखा जाए तो, और बहुत मेहनत वाला पुरुषार्थ भी है और है भी सहज, लेकिन कहीं कहीं होता ही है कि हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, चला देते हैं अपने आप को, तो वो थोड़ी सी लापरवाही हमारे लिए बहुत नुकसानदायी हो जाती है। प्रयास भी करते हैं, ऐसा नहीं कोई प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसे ऐसे सामने जिससे हमारा थोड़ा अटैचमेंट होगी, जिसको हम सोचते हैं तो हमारा नज़दीक ही है, ठीक है हम बड़े प्यार से भोजन करेंगे और बीच में ज्ञान की ही बात करेंगे, लेकिन ज्ञान की बात भी किसी को अगर हम कह दें तो सामने बाला बाले की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो उसको वो भी अज्ञान ही दिखाई पड़ता है। तो भोजन तो प्रयास करना है, अगर हम संगठन में करते हैं तो धीरे धीरे अकेले हो जाना है कोई कुछ भी करे, क्योंकि वो हमारा टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम भोजन नहीं कर रहे हैं वास्तव में, वो योग की शक्तियां खा रहे हैं, वो तो भगवान के दिए हुए वरदानों को स्वीकार कर रहे हैं। याद में अगर हम जब हम भोजन करते हैं तो हमने देखा संकल्प भी धीरे धीरे बहुत चेंज हो जाते हैं, संकल्पों में एनर्जी आती है, ताकत आती है, शक्ति आ जाती है, इसलिए धीरे धीरे संगठन से अलग होकर भोजन कर लेना है, क्योंकि संगठन में बैठे तो कहीं ना कहीं कोई तो कोई बात निकली आती है, तो इसलिए कोई कोई हमने देखा कोई कोई भाई है बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं आजकल, अकेले बैठ के भोजन करते हैं, तो वो हाँ जी मौन में करते हैं, और उस सामने जो हमारे भोजन रखा है उसको हम कितनी श्रद्धा पूर्वक, कितने भाव से या कितनी अनासक्त भाव से उसका हम सेवन कर रहे हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो भोजन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और बिना भोजन के तो रहेंगे नहीं, भोजन तो सबको करना ही करना है, वो अलग बात है, क्योंकि आजकल भोजन के ऊपर भी बहुत गहरी रिसर्च चल रही है, बिना भोजन के जीवन भी कैसे हो, और उस पर रिसर्च जारी है, और निश्चित रूप से उस पर सफल होंगे सभी, क्योंकि भोजन वास्तव में उतनी शरीर को जरूरत है भी नहीं है अगर देखा जाए, अगर गहराई से हम सोचे उस पर चिंतन करें तो। जैसे बाबा कहते ना खुशी में खुराक की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है, तो हमारी भोजन की मात्रा ज्यादा है, अर्थात हमें उतनी ज्ञान योग की खुशी में वृद्धि नहीं हो रही अभी तक। बाबा ने 36 प्रकार के यहां नहीं वहां के लिखा हुआ है, यहां तो 36 नहीं आस 63 प्रकार के भोजन आपको खिलाए जाएंगे अभी, ये बाबा ने इस भोजन के लिए कहा है, ज्ञान का भोजन लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार परिवर्तनशील है ना, हाँ जी खाने के लिए जी रहे, तो हमको भोजन ये गुणों का भोजन करना है, और जितना इस भोजन को खाएंगे सचमुच खुशी बढ़ेगी। सभी अनुभव करते होंगे जिस दिन हम अच्छा चिंतन करते हैं, नए नए विचार आते हैं, उस दिन खुशी अपने आप बढ़ जाती है, उतनी भूख नहीं लगती है, उतना हमारा भोजन के बारे में विचार भी नहीं चलते हैं इतने, और जिस दिन थोड़ा मूड ऑफ है और किसी मित्र ने दोस्त ने सखी सहेली ने कह दिया चलो आज बनाते हैं, मन कैसे खुश हो जाता है। हाँ जब कमाई होती है तो भूख मिट जाती है, नींद फिट जाती है, भूख मिट जाती है, ग्राहक आने लगता है, तो इसी तरह से ये गुण हमारे जीवन का भोजन है ये। तो ये 63 जीवन गुण जो हम खाएंगे अब 63 दिनों में तो हम कितने शक्तिशाली हो जाएंगे। तो एक एक गुण को हमको दिन अभी जैसे अभी आज से श्रृंखला आरंभ हुई है तो इसको हमको स्वयं भी चिंतन करना, नहीं तो होता क्या है कि केवल मेरा सब्जेक्ट तो यही है बस एक्यूरेसी वाला, बाकी मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो भोजन ये हमारे गुण हमारे अंदर में आएंगे नहीं बिल्कुल भी। होता ही है कि जो टॉपिक मिल रहा उसी का काम है, नहीं वो कम से कम याद तो रखें, आई लव मम्मा, आई लव सेवा, आई लव यज्ञ, आई लव परमधाम, सूक्ष्म वतन, तो ये चीजें अगर हमको याद रहेंगे थोड़ा तो चिंतन चलेगा, कुछ तो हमारे हाथ में आए, नहीं तो वहीं का वहीं रह जाएगी। जैसे यहाँ आए हैं तो ऐसा नहीं कि हमको समय पास करने के, हाँ ऐसे भी होता कई होते हैं हम ना उस संगठन से जुड़े हुए हैं, जुड़े तो हुए हैं लेकिन हम ले कितना पा रहे हैं, उस ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं, या उसी ग्रुप की क्लास सुनना पसंद करेंगे, या किसी एक विशेष व्यक्ति की क्लास सुनना पसंद करेंगे, लेकिन वो क्लास हमारे अंदर नहीं आएगी कभी भी जब तक हमारे अंदर वो ही आएगा जो हमने खुद किया हुआ है। अदरवाइज जितनी मर्जी क्लासेस सुन लें, क्लासेस सुनना ये हमारे पुरुषार्थ के विकास की एक सीढ़ी है, लेकिन उन सीढ़ियों के आगे चढ़ना हमको स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे हाथ में वही पुरुषार्थ है जो हम खुद कर रहे हैं। यहां से सुन लिया, ये किसी के पास कुछ नहीं रहेगा, अभी जो भी अभी आपने सुना कुछ नहीं रहेगा ये, लेकिन जब यहां से हम जाएंगे और जो हम इस पर काम करेंगे वो हमारे हाथ में रहेगा। नहीं तो हमने तो काम उतार दिया, सुना दिया, ये पूरा हो गया, लेकिन हमारे हाथ में क्या रहा? वो तब रहेगा जब हम यहां से जाने के बाद उस पर चिंतन करेंगे। इसलिए जो भी विषय हमको मिलता है तो उसको हम अपना समझ के, जैसे मुरली से सबको प्यार होता है, ऐसे एक एक गुण से भी हमको, क्योंकि मुरली क्या है, गुणों की खान है, गुण अवगुण का तो सारा है। अवगुणों का समावेश हमारे में हुआ तो हमारी गिरती कला हुई। अब हमें गुणों से स्वयं को भरपूर करना है, चार्ज करना है, शक्ति भरनी है, तो हमारा विकास होगा। तो हर चीज के ऊपर हमें स्वयं काम करना है, स्वयं के ऊपर। जैसे कहते थे कि बाबा मेरे लिए, ऐसे समझ के बैठिए बाबा मेरे लिए मुरली सुना रहा है, अब सुनाने वाला भी सुना रहा है, सुनने वाला भी सुन रहा है, लेकिन उसको सचमुच हमारे अंदर में उसका कितना गहरी महसूसता हो रही है कि सचमुच वो वाक्य मेरे लिए है, कि भगवान मुझे आके पढ़ा रहा है। सुनाना तो आसान है लेकिन महसूसता होनी चाहिए। वो तब होती है जब हम दिन में काम करते हैं उसके ऊपर। सवेरे शाम तो संगठित रूप से पुरुषार्थ ठीक है, वो एक जो एक नियम बना हुआ, मर्यादा बनी है यज्ञ की तरफ से, जो दिनचर्या बनी है उस पर तो चलते हैं सभी, सवेरे शाम योग करते हैं। लेकिन जो दिन का टाइम है, जो हमारा वेस्ट जाता है, उस पर हम थोड़ा सा अगर काम करेंगे तो वो हमारा पुरुषार्थ हमारे लिए एनर्जी क्रिएट करेगा, हमारे रास्ते आसान कर देगा, हमारे पुरुषार्थ में एक्यूरेसी आती जाएगी अपने आप। उस पर करना नहीं पड़ेगा, सोचना कि नहीं पड़ेगा, कोई प्रश्नों का अंबार नहीं लगेगा, क्या करें क्या नहीं करें। हमारे प्रश्न तैयार कब होते हैं? जब हम दिनचर्या से अलग हो जाते हैं, भगवान के माँ वाक्य से थोड़ा अलग हो जाते हैं। एक्यूरेट रास्ता तो भगवान के सिवा और कौन बताएगा हमको, तो वो तो रोज ही हमको बता रहा है। लेकिन उस रास्ते को हम नजरअंदाज करके दूसरे दूसरे रास्तों पर चलने की जो हमको आदत पड़ी है, उनको हम छोड़ना भी तो नहीं चाहते ना, साइड सीन है, क्योंकि वो अच्छे लगते हैं, आदत पड़ी है, संस्कार पड़े हैं, लंबे समय का अभ्यास है उनका भी। अब ये थोड़े समय का इसके ऊपर चलना और नया आदत का निर्माण करना, नए संस्कारों का निर्माण करना, उसके लिए खुद ही काम करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी गोड़ तो नशा चढ़े, तो स्वयं के ऊपर ही हमको फोकस करना, तो हमारे पुरुषार्थ में एक्यूरेसी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जो बाबा कहते यथार्थ पुरुषार्थ क्या है, अर्थात जो एक बार गलती की वो दोबारा ना हो। एक गलतियां तो फिर भी बार बार होती है हमारे से, हम प्रतिज्ञा तो कर लेते हैं, बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा की फाइलें तो बहुत हैं, लेकिन फाइनल कहाँ हो रहा है? तो स्वयं के ऊपर ही अटेंशन रखेंगे तो हमारा पुरुषार्थ में एक्यूरेसी आती जाएगी। जो उसका विरोधी अवगुण है, अयथार्थ, वो हमारे जीवन से समाप्त होती जाएगी। वो फिर हमारे में स्वयं आत्मसात तभी होगा जब हम स्वयं के ऊपर स्वयं ही काम करेंगे। स्वयं के ऊपर रहम करने की जरूरत है। दूसरों के लिए अच्छा सोचना बहुत आसान है, स्वयं के लिए अच्छा सोचना मुश्किल है। संडे की मुरली में था ना, क्या दूसरी आश बाबा की, सर्व के प्रति शुभ भावना, ब्राह्मण परिवार के प्रति, लेकिन उससे पहले तो स्वयं के प्रति शुभ भावना कामना कहां रहती है? कहां काम स्वयं को सारे दिन में धोखा देते रहते हैं, चाहे वो गपशप मारने में जा रहा है टाइम, चाहे कुछ चीज देखने में टाइम जा रहा है, चाहे हमारा सोने में जा रहा है, चाहे खाने में जा रहा है, तो स्वयं के साथ भी तो न्याय नहीं कर रहे ना हम, स्वयं के साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो स्वयं के प्रति शुभ भावना कामना कहां होगी? तो एक्यूरेसी ऐसे थोड़ी नहीं आएगी। बहुत सारी चीजों के ऊपर हमको निरंतर काम करना पड़ेगा तो हमारे जीवन में एक्यूरेसी आती जाएगी। एक्यूरेसी माना एक चीज जो है संपूर्ण सत्वप्रदा, जैसे सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो एक्यूरेसी एक दिन में आने वाली नहीं है, लेकिन उसके ऊपर निरंतर अभ्यास पुरुषार्थ हर चीज में, चाहे देखने में, बोलने में, सुनने में, सुनाने में, सोचने में, खाने में, पीने में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर चीज में हमको अटेंशन, निरंतर सजगता चाहिए, स्वयं के ऊपर पूरी पक्की नजर चाहिए वो। क्योंकि दूसरा कोई हमारा कल्याण करने वाले सोचे कि हमारे दूसरे, कई बार कहते हैं ना हमारे लिए योग करो, अब जिस परिस्थिति का हमको मालूम है, सामने वाला योग तो भले करेगा लेकिन उस परिस्थिति से निकलने का मार्ग भी हमको ही पता है। जो हम स्वयं का मार्ग निर्माण करेंगे उस पर चलने का मजा ही अपना है। दूसरे के बताए पर रास्ते पर चलना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहते ना महान पुरुष अपने रास्ते का निर्माण स्वयं ही करते हैं। तो बाबा ने हमको रास्ता तो बता दिया लेकिन उस पर चलना हमको ही है। तो उस रास्ते पर चलने की बजाय हम कहीं कहीं साइड सीन में तो नहीं जा रहे हैं। ये सारे आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। हमारे अंदर के संसार में क्या क्या चल रहा है, हमारी सोच में कहाँ तक परिवर्तन हो रहा है, हमारे संकल्पों में एक्यूरेसी कहाँ तक आती जा रही है, हमारे संकल्पों में शुद्धता कहाँ तक आती जा रही है। हाँ जी, दिनचर्या की एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि दिनचर्या हमारी जो हम सोच कर वैसी रहेगी। दिनचर्या दिन में बिल्कुल चेंज भी हो सकती है, जो हमने सवेरे सोचा उससे बिल्कुल अलग भी हो सकती है, लेकिन उस दिनचर्या में हमारी मानसिक स्थिति हलचल में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, अलग अलग स्वभाव संस्कार वाले होंगे, तो उनसे हमको निपटना तो है ही ना, किनारा तो कर नहीं सके, क्योंकि बीज तो हमने बोए हुए हैं तभी तो हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं। उस फसल से किनारा नहीं कर सकते, हमको काटनी तो हमको ही है। लेकिन वहां भी हम उस दिनचर्या में भी अप्रभावित रहे, बाबा हमारी स्थिति एक रस अचल अडोल रहे, बाबा हमारा पुरुषार्थ अंदर में चलता ही रहे। क्योंकि बाहर की बात नहीं, तो सारे आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। तो ये 63 दिन जो श्रृंखला चलेगी, गुण अवगुणों की धूप और छांव, इसमें धूप भी आती रहेगी छांव भी आती रहेगी, लेकिन उस धूप का भी हमको फायदा लेना है तो छांव का भी फायदा लेना है, गुणों का भी फायदा लेना है तो अवगुणों का भी फायदा लेना है। ये जो सुनाया ना, ये यथार्थता का धूप भी इसमें और छांव भी इसी में है। अब उसको अलग अलग आप कर लेना, बीच में उसका चित्र बना देना एक। तो जैसे वरदान था ना, परसों के वरदान में था, संडे के वरदान में, कि जो ड्रामा के अनुभवी बच्चे हैं वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेंगे। तो हमको गुण भी देंगे, अवगुण भी दिखाई देंगे सब में, लेकिन हमको अवगुण में से भी कुछ गुण ग्रहण कर लेने, विशेषताएं हैं जी, वो खाद का काम करेंगे। चाहे हमको कोई कांटा भी लगा रहा है और हमने देखा, अगर हमको कोई कटाक्ष करता ना, अगर हम उसको अंदर स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, वो हमारी स्थिति बहुत शक्तिशाली बन जाती है। और जो बोलने वाला उसके प्रति हमारे भाव भी नहीं बदलते हैं, ऊंचे भाव ही रहते हैं, क्योंकि उसमें हमको पता चल गया जरूर हमारा हिसाब किताब है इसके साथ। और जब हम सोचते हैं हमारे परिवार का, तो हमारा बड़ा भाई तो है, अगर छोटा भी हो तो कोई बात नहीं, बड़ा समझ लो उस समय। अगर बड़े ने छोटे को कुछ कह ही दिया तो उसके भले के लिए कहा होगा ना। बताया था ना उस दिन, भारतीय केकड़े इकट्ठे रहते संगठित रूप से, तो वो खींचा किस लिए, कि संगठन में रहो, अकेले अकेले नहीं चलो। पुरुषार्थ के लिए नहीं खींचा वो, संगठन में बल है, वो हमको सिखाता है, वो इसलिए वो हमारी टांग खींच रहा है। तो अवगुण में भी हमको गुण ढूंढ लेना है। तो बहुत सारी बातें हम 63 दिनों में 63 गुण ये सीखेंगे तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तो आज पहला दिन था एक्यूरेसी। तो रोज हमको गुणों का श्रृंगार करना है, इस पर स्वयं का चिंतन करना है। अगर ये 63 दिन रोज का हम एक एक लाइन दो दो लाइन में चिंतन करेंगे तो हिसाब लगे 63 दिनों में कितने चिंतन हो जाएगा हमारे पास और कितनी हमारी बुद्धि शक्तिशाली बन जाएगी। कल बाबा ने बताया ना कि पॉइंट डायरियों में नहीं रखो, बुद्धि में नहीं रखो, उसको जीवन में लाओ। कल की साकार मूल्य में था ना। तो ये धीरे धीरे हमारा एक अपनी प्रॉपर्टी, मलकियत, जायदाद बन जाएगी। और जिसने अपने खून पसीने से जायदाद बनाई है, प्रॉपर्टी बनाई है, उसका नशा अपना रहता है। तो हमको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हम व्यक्तिगत रूप से भी इसमें सारे दिन में अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और इस जीवन का आनंद लेंगे, मौज लेंगे इसकी। ओके, ओम शांति।
अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है, सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। तू दीप से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई